इन रोए आंसू पार्ट 4। पूरा नॉवल सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और यूनिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस वक्त पर मिली जा सकें। शुक्रिया। वो अपने कमरे में दाखिल होते इर्तज़ा को देखकर बहुत खुश हुई। उसका दिल मचलने लगा। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई हो रही है। लगता है अब की बार फर्स्ट पोजीशन लेने का इरादा है। वो बेतकल्लुफी से सोफे पर बैठ गया। समन भी कमरे में ही मौजूद थी। मैं ऑफिस के काम से टोक्यो जा रहा हूँ, जल्दी से अपनी अपनी फरमाइश बता दो, क्या क्या चीजें लाऊं तुम्हारे लिए वहाँ से?
जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे कभी नहीं दोगे। वो चुपचाप उसकी तरफ देखती रही।
यार, मम्मा ने तो बस यूं ही एक बात कही थी, तुम बिला वजह उनके डांटने पर इतनी सीरियस हो गई हो।
बड़े यकीन से वो उसकी खामोशी की वजह बता रहा था,
यूं जैसे इस बात के अलावा और कोई बात हो ही नहीं सकती थी।
ये बिल्कुल इत्तफाक ही था कि जिस रोज इर्तज़ा के कजन्स उन लोगों के घर आए थे, उसी रोज सुबह मम्मा ने उसे स्टडी में सीरियस ना होने और अपना वक्त बेकार के मशगूलों में जाया करने पर खासा तफसीली लेक्चर दिया था। इर्तज़ा उस वक्त वहीं बैठा हुआ था और उसने हमेशा की तरह मम्मा के सामने सबा की तरफदारी ही की थी।
सबा का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इस बात की आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। हर एक का पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। सबा हर वक्त किताबों में मुंह घुसार कर नहीं बैठती, लेकिन जिस वक्त पढ़ती है तो फिर पूरी संजीदगी से पढ़ाई करती है।
इर्तज़ा ही की वजह से मामा ने अपनी डांट और लेक्चर का दुरानिया थोड़ा मुख्तसर कर दिया। समन अपने जर्नल पर डायग्राम बनाते हुए उन दोनों की तरफ भी तकती जा रही थी। इर्तज़ा ने समन की तवज्जो महसूस की तो बज़ाहिर उसे नज़रअंदाज किए सबा से बोला,
हमारी सबा तो हंसती खिलखिलाती और शरारते करती अच्छी लगती है। बड़ी भीड़ टाइप की बुजुर्ग और संजीदा खवातीन तो यहाँ पहले ही खासी तादाद में मौजूद हैं। अम्मा और मम्मा तुम्हें जिन खतून के जैसा बनने की नसीहतें करती हैं, खुदा के लिए तुम उनके जैसी मत हो जाना।
उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में बड़ी शरीर सी चमक थी। समन ने पेंसिल और रबर एक तरफ रख कर इर्तज़ा की तरफ नाराज नजरों से देखा था। वो उससे बेनियाज सबा से बातों में मसरूफ था, लेकिन आंखों की चमक बता रही थी कि वो समन के तासुरात को एंजॉय कर रहा है।
आपको मेरी पसंद मालूम तो है, बस आपको अच्छा लगे ले आएगा।
वो उसके इसरार पर आहिस्तगी से बोली। कुछ देर तक वो उससे उसकी पढ़ाई के बारे में बातें करके कमरे में चला गया था। उसके जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके मिजाज की तब्दीली घर के किसी फर्द के लिए भी काबिले कबूल नहीं। अभी तो इम्तिहानों का बहाना था। उसके बाद उसके पास सबसे अलग थलग और खामोश रहने के लिए क्या बहाना होगा। वो परेशान हो गई थी। अम्मा तक भी जो उसे समन के आने के बाद से अक्सर उस जैसा बनने की नसीहतें करने लगी, कल बेख्तियार कह उठी,
मेरे घर की बुलबुल खामोश क्यों है? तुमसे ही तो
इस घर में रौनक है सबा, आजकल तो घर काटने को तोड़ता है। ऐसी खामोशी, कोई शोर शराबा ही नहीं। वो परेशान हो गई थी, उसके बदले रवैये को कोई कबूल नहीं कर सकता था। वो हंसना और शरारते करना छोड़ दे, इर्तजा के आगे पीछे फिरना छोड़ दे, सफर से लड़ना छोड़ दे, अम्मा से बहस करना छोड़ दे। उसे खुद को बदलना होगा, सबा को अब बड़ा होना होगा, अपनी खुशी और गम छुपाना सीखना होगा। अब वो कभी किसी को, सिर्फ सबा शफीक का दिल रखने की खातिर चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट नहीं सजाने देगी। वो दोबारा से पहले वाली सबा बन गई थी। इर्तजा टोक्यो से वापस आया तो उसके लिए बहुत सी चीजें लाया था। ये रही तुम्हारी चॉकलेट्स, ये रहे तुम्हारे कीचेन्स, देख लो ये सारी की सारी तुम्हारे पसंद के कार्टून करेक्टर के कीचेन्स हैं, और ये है तुम्हारे पसंद के कलरफुल पेन और पेंसिलें, और सबसे खास चीज ये कैलकुलेटर। जब तुम यूनिवर्सिटी जाना शुरू करोगी तो इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी, उसने कैलकुलेटर उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। अब मुझे पता चला है कि सबा को इस तरह की चीजें लाकर कौन देता है। समन ने, जो की चेन्स को देख रही थी, मुस्कुराकर बोली। वो समन की बात सुने बगैर भागती हुई अपने कमरे में गई और वहां से अपना कॉलेज बैग उठाकर ले आई। पहले की लगी हुई की चेन्स उतार कर उसने उनकी जगह इर्तजा की लाई हुई नई की चेन्स लगानी शुरू कर दी। इर्तजा इस काम में उसकी मदद करवा रहा था। सबा को शुरू से ही शौक है इस तरह की चीजें जमा करने का। की चेन उसके साथ बैग पर लगाते हुए इर्तजा ने समन की मालूमात में इजाफा किया। तब ही उसके पास मार्कर्स और पेंसिलों का इतना जबरदस्त रखेजा है, मुझे भी हमेशा से नई नई तरह के पेन जमा करने का शौक रहा है। फिर तो मुझे तुम्हारे लिए भी इस तरह की कोई चीज लानी चाहिए थी, और की चेन से तवज्जो हटाकर समन की तरफ देखते हुए तासुफ से बोला। तुम कभी बताती भी तो नहीं हो अपनी पसंद नापसंद, बता दिया होता तो मैं तुम्हारे लिए भी दो चार मुनफरिद किस्म के पेन ले आता, उसके लहजे में अफसोस के साथ साथ खौफी भी थी। ये तो मैं ऐसे ही एक बात कह रही थी, और वैसे भी आप अपने बिजनेस के काम से गए थे, मेरे हिसाब से तो इस परफ्यूम की भी कोई जरूरत नहीं थी, समन ने उसे बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। समन को जो परफ्यूम इर्तजा ने तोहफे में दिया वो बहुत कीमती था, लेकिन सबा के सारे तोहफों की कीमत के साथ अगर उस परफ्यूम का मुकाबला किया जाता तो यकीनन सबा के तोहफे कीमत में ज्यादा थे। वो एक अकेला परफ्यूम जो बहुत महंगा था, लेकिन सबा के लिए आए बहुत सारे तोहफों की मुश्तरका कीमत का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे लेने के लिए सबा का दिल मचल रहा था, उसका दिल चाह रहा था कि वो समन से तोहफा बदल ले, उसका दिल चाह रहा था वो समन से कहे, ये सब चीजें तुम ले लो, मुझे बस सिर्फ ये परफ्यूम ले लेने दो। इर्तजा से उसके लाए हुए तमाम तहफ का शुक्रिया कहकर और उन पर अपनी पसंदगी का इजहार कर जब वो कमरे में आई तो उसकी सबसे पहले नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे उस परफ्यूम पर पड़ी जिसे अभी कुछ देर पहले ही समन ने यहाँ रखा था। उसे हसद महसूस हुआ। अपने सब तोहफे उठाकर फेंक देने को दिल चाहा। क्या ऐसा हो सकता है कि बेवक्त किसी से मोहब्बत भी करे और नफरत भी। उसे कभी समन से मोहब्बत महसूस होती और कभी शदीद नफरत। उस वक्त वो शदीद नफरत के हसार में थी। तुम यहाँ क्यों आ गई हो समान? वापस चली जाओ, खुदा के लिए वापस चली जाओ, मुझसे मेरी मोहब्बत मत छीनो। मैंने उस शख्स से बहुत शदीद मोहब्बत की है और उसके अलावा मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी।
उस रोज खाने की मेज पर पापा और डैडी इर्तज़ा के जापान के बिजनेस ट्रिप को मौजू गुफ्तगू बनाए हुए थे। वो जिस काम से गया था उसे बड़े शानदार तरीके से मुकम्मल करके आया था। खाने के दौरान सारा वक्त यही बातें हो रही थी। इर्तज़ा भाई कितने ज़हीन हैं, मैं उनसे बुरी तरह इम्प्रेस हूँ। चाय बनाते हुए समा ने उससे कहा। खाने के बाद जफर की फरमाइश पर समन किचन में चाय बनाने आ गई थी। काम करते हुए वो मुसलसल इर्तज़ा की जहानत को डिस्कस कर रही थी। इर्तज़ा भाई मुझे बता रहे थे कि उन्हें मुख्तलिफ ज़बानें सीखने का बहुत शौक है और इस चीज ने उन्हें टोक्यो में कितना फायदा पहुंचाया। आप कहीं कोई बिजनेस डील करने गए हों और जिसके साथ आपको मालूमात तय करने हैं, आप उसके साथ उसी की जुबान में बात करें तो वो शख्स तो आपको फौरन ही अहमियत देने पर मजबूर हो जाएगा। फितरी सी बात है ना। वो समन की तारीफों पर खामोशी से मुस्कुराई। अभी तुम्हें शायद पता ही नहीं है समन कि ये शख्स जिंदगी के हर मैदान में यूं ही जीतता आया है, इसीलिए तुम्हें हैरत हो रही है। इर्तज़ा भाई कितने जीनियस है ना सबा। मुझे तो बड़ा फखर होता है इस बात पर कि वो हम लोगों के कजन हैं। बाकी सबको लाउंज में चाय देकर वो दोनों लॉन में आ गई थी। और पता है सबा, इर्तज़ा भाई जब मुझे यूनिवर्सिटी लेने आते हैं तो मेरी फ्रेंड्स उनके बारे में कितने जबरदस्त कमेंट्स दिया करती हैं। सबीका, सोनिया और शैला तीनों कहती हैं, तुम्हारे इस कजन में अजीब सी कशिश है। मेरी पास क्लास फेलोज जिनसे मेरी खासी दोस्ती भी नहीं, उन तक ने अपनी तरफ से भी बड़ी लापरवाही से बातों बातों में मुझसे इर्तज़ा भाई के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। सच सबा, इर्तज़ा भाई पर लड़कियां मरती हैं। पता नहीं उन्हें ये बात मालूम है या नहीं कि वो लड़कियों में कितने पॉपुलर हैं। वो चाय के सिप लेते हुए इर्तज़ा ही को मौजू गुफ्तगू बनाए हुए थी। वो बेवकूफ तो नहीं है समन, अच्छे खासे ज़हीन आदमी हैं। जाहिर है उन्हें ये बात अच्छे तरह मालूम होगी, बल्कि दिल ही दिल में वो इस बात पे बहुत खुश होते होंगे। और क्या पता वो तुम्हें यूनिवर्सिटी लेते और आते जाते इसीलिए हैं कि वो लड़कियों के पागलपन का मजा ले। कैसी बातें कर रही हो तुम। इर्तज़ा भाई इस तरह के हरगिज नहीं हैं। समन ने उसके तबसरे को नापसंद किया था। तो तुम उस मकाम तक आ गई कि तुम्हें उनकी बुराई बुरी लग रही है। वो खामोशी से समन की तरफ देखती रही। तुम सो गई सबा, समन ने जाय नमाज तय करते हुए बोला। फिलहाल तो जागी हुई हूँ। उसने बंद आंखें खोलकर समन की तरफ देखा। वो कमरे की लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जलाने के बाद बेड पर आ गई थी। मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बहुत पर्सनल बात। मैं इस बात का जिक्र तुमसे करना नहीं चाहती थी, बल्कि किसी से भी नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी मैं तुमसे इस बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पा रही। समन की मध्यम सी आवाज उसने बड़े गौर से सुनी। वो अपनी जगह पर लेटने के बाद उसकी तरफ करवट लिए हुए थी। हो सकता है ये महज मेरा वहम है, उन्होंने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा। शायद मैं खुद ही उनकी तवज्जो और अल्तफात के हालत मायने निकाल रही हूँ, मगर उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ सबा। यकीन करो, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक क्लास फेलो دل و جان سے مجھ پر فدا تھا، ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، مگر مجھے اس میں کبھی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اس کا دیکھنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ پاپا کے ایک دوست کا بیٹا تھا، وہ بھی بہانے بہانے سے ہمارے گھر میری وجہ سے آیا کرتا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکے کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا۔ جب میں یہاں آئی تو شروع میں ارتضا بھائی کی توجہ کو صرف ایک کزن کا اچھا سلوک سمجھتی تھی، مگر پھر پتہ نہیں کیوں مجھے آہستہ آہستہ ان کا یہ انداز اچھا لگنے لگ گیا۔ تم بتاؤ صبا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کچھ مختلف انداز سے سوچتے ہوں؟ کیا یہ صرف میرا وہم ہے یا واقعی مجھے غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں؟ اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تھی۔ تم آج کل سارا وقت ان کی نظروں کے حصار میں رہتی ہو، پھر بھی یہ بات پوچھ رہی ہو؟ کیا تم اس شخص کی نگاہیں پڑھنا نہیں جانتی جن میں تمہارے لیے محبت اور والہانہ چاہت کے سوا کچھ اور ہوتا ہی نہیں؟ اس نے سمن کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ تم میں کس بات کی کمی ہے سمن، تم سے تو کوئی بھی محبت کر سکتا ہے۔ خوش قسمت تو ہوگا وہ شخص جسے تم سے محبت ہوگی، اور یقیناً وہ خوش قسمت انسان ارتضا بھائی ہی ہیں، اور جو وہ بھاگے بھاگے تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتے ہیں تو یقیناً خدمت خلق کے طور پر تو ہرگز نہیں ایسا کرتے۔ وہ اس سے کسی بھی قسم کی منفی اور دل توڑنے والی بات نہیں کہہ پا رہی تھی۔ سمن اس کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ لیکن صبا، مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہے؟ وہ کتنے کوالیفائیڈ ہیں، کتنے ہینسم ہیں اور ذہین ہیں، اور میں نے ابھی آنرز بھی مکمل نہیں کیا، اور پھر میں ان کے جیسی غیر معمولی شخصیت بھی نہیں ہوں۔ تو تم ان سے 5 سال چھوٹی بھی تو ہو، انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، تو تم بھی کر لو گی۔ اب تک کی پرفارمنس میں تم ہمیشہ پوزیشن ہولڈر میں ہی شامل رہی ہو، اور تمہاری خوبصورتی کی اگر میں تعریفیں کرنا شروع کی تو تم بلا وجہ چڑ جاؤ گی، جو میں چاہتی نہیں ہوں، اس نے ٹپٹنے انداز میں کہا۔ صبا، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، وہ واقعی بہت اچھے ہیں، سب کا خیال رکھنے والے، ان کا سینس آف ہیومر کتنا اچھا ہے۔ سمن ارتضا کی تعریفیں کرنے میں مصروف تھی، اور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے میں۔ ابھی تو تمہیں یہ پتہ چلا نہیں ہوگا کہ اس شخص کی آنکھیں بھولتی بھی ہیں۔ کیا تم نے کبھی ایسی زندگی سے بھرپور چمکدار بھولتی ہوئی آنکھیں پہلے دیکھی ہیں؟ وہ مسکراتا ہے تو اس کی آنکھیں مسکراتی ہیں، وہ غصے میں ہو تو اس کی آنکھیں بھی خفا خفا سی نظر آتی ہیں، جب وہ لکھتے لکھتے کچھ سوچنے لگتا ہے تو بے خیالی میں قلم اپنے لبوں میں دبا لیتا ہے تو وہ کتنا زبردست لگتا ہے۔ اسے ٹائی باندھتے وقت کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر شیشے میں دیکھے بھی وہ اتنی زبردست نوٹ بناتا ہے۔ پاپا اور ڈیڈی سے بھی اچھی، اسے ٹیولپس بہت پسند ہیں، اسے وائٹ لیلی اور سفید پھول بہت پسند ہیں۔ ساری دنیا سرخ گلابوں پر مرتی ہے اور اسے سفید گلاب پسند ہے، وائٹ کلر اس کا فیورٹ کلر ہے نا۔ اسی لیے میری کبرڈ میں دیکھو سمن، اس میں اکثر لباس تمہیں سفید رنگ کے نظر آئیں گے، ماما کہتی ہیں۔ صبا تو بازار جا کر وائٹ کلر کے ڈریسز کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، اسے کیٹس کی شاعری بہت اچھی لگتی ہے، اسے سردیوں کی بارش بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اپنے خیالات میں گم ہو چکی تھی کہ سمن کی بات سے سن کر چونک اٹھی۔ پرسوں ان کی سالگرہ ہے نا، میں سوچ رہی ہوں हम दोनों मिलकर उन्हें कोई तोहफा दें। वो टोक्यो से हम दोनों के लिए तोहफे लाए हैं, फिर हमें भी तो उन्हें कोई तोहफा देना चाहिए। लेकिन तोहफे में क्या चीज देनी चाहिए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों में मैं घर के सब लोगों की पसंद नापसंद से बहुत अच्छी तरह आगाह हो गई हूँ। किसको खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, और ऐसी ही छोटी छोटी बातें। लेकिन उनकी खाने में पसंद तक का मैं अंदाजा नहीं कर पाती। वो तो हर डिश एक ही जैसी रगबत से खाते हैं, पता ही नहीं चलता उन्हें क्या चीज अच्छी लगती है और क्या नहीं। अम्मा ने बचपन में हम तीनों को एक बात सिखाई थी कि खाने की मेज पर बैठकर कभी खाने की बुराई मत करना, कभी किसी खाने की चीज को देखकर मुंह मत बनाना। अल्लाह की नेमत को देखकर मुंह बनाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है, रिजक में से बरकत उठ जाती है। हम तीनों में से ये बात सबसे अच्छी तरह उसने समझी। लेकिन फिर भी समन, तुमने शायद कभी गौर नहीं किया। अगर गौर करती तो तुम्हें पता चल जाता कि उसे पनीर डालकर बनाई हुई मिक्स सब्जियां बहुत पसंद हैं। व्हाइट मीट वो बहुत शौक से खाता है, उसे तली हुई मछली और मसाले भरी भिंडियां बहुत अच्छी लगती हैं। चाइनीज खाने उसे बहुत ज्यादा पसंद हैं। अभी तो उसकी बहुत सी खूबियां और अच्छाइयां तुम्हारी नजरों से ओझल हैं समन। जब तुम्हें वो मालूम होंगी तो तुम मजीद उसकी आशिक हो जाओगी। बराबर लेटी हुई वो दोनों लड़कियां एक ही शख्स के बारे में सोच रही थी, उस फर्क के साथ के एक जो सोच रही थी उसे बोल भी रही थी और दूसरी जो सोच रही थी उसे बोल नहीं सकती थी। इर्तजा की सालगिरह का दिन था। समन ने सुबह उठने के साथ ही उससे पूछा था, तुम्हारे जेन में कोई गिफ्ट आया? मैं तो कल सारा दिन सोचती रही लेकिन कोई चीज मेरी समझ में नहीं आई। वो इर्तजा को तोहफा देने के लिए बहुत बेचैन नजर आ रही थी। मैं तो गिफ्ट बहुत दिन पहले हुए खरीद भी चुकी। अब की दफा उसका इर्तजा को तोहफा देने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके तोहफा ना देने पर कोई और चौंकता या नहीं, कम अज कम इर्तजा तो उस बात पर ना सिर्फ चौंकता बल्कि बकायदा उसके पास आकर तोहफा ना देने की वजह भी दरियाफ्त करता। काफी दिन पहले जब वो और एक रोज मामा के साथ शॉपिंग करने गई थी तो इर्तजा को तोहफे में देने के लिए एक खूबसूरत टाई और वॉलेट खरीद कर लाई थी। तुमने मुझे बताया भी नहीं। परसों रात भी जब मैं इस बारे में बात कर रही थी तो घनी बुनी लेटी रही थी। समन ने मस्नूई खुफकी से घूरा। मुझे क्या पता कि तुम भी उन्हें गिफ्ट देने के लिए इतनी बेताब हो। मैं तो शुरू ही से इर्तजा भाई को बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट दिया करती हूँ। इसमें कौन सी खास बात थी जो मैं तुमसे जिक्र करती? उसने अच्छे खासे बेमरवत अंदाज में समन से कहा। लेकिन समन पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी जो उसे सबा की कोई बात बुरी ही नहीं लगती थी। उसे ना सबा का लहजा बुरा लगा और ना ये बात कि सबा ने उसे बगैर बताए तोहफा खरीद लिया। मैं फिर ऐसा करूंगी कि जाकर उनसे पूछ लूंगी कि वो गिफ्ट में क्या लेंगे। अब इतने मुश्किल बंदे को मैं खुद से क्या दूं? कम अज कम मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। उसने ना समन की बात का कोई जवाब दिया ना उस बारे में कोई मशवरा कि वो तोहफे में क्या दे। समन कमरे से चली गई। वो खुद भी कॉलेज के लिए तैयार हो चुकी थी। अपनी अलमारी में रखा हुआ गिफ्ट उसने निकाला और इर्तजा के कमरे की तरफ आ गई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजा खुला देखकर हल्के से दस्तक देकर यूं ही अंदाज में जाने का इरादा रखती थी, लेकिन अंदर कमरे में इर्तजा के सामने खड़ी समन को देखकर उसका दस्तक देने के लिए उठता हुआ हाथ बेसाख्ता रुक गया। उन दोनों में से किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी थी। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर उन्हें सबा शफीक नजर आ भी नहीं सकती थी।
मैं आपको सालगिरह की मुबारकबाद देने और ये पूछने आई हूँ आप मुझसे क्या गिफ्ट लेंगे। बहुत गौर फिक्र किया मैंने, लेकिन आपको देने के लिए कोई चीज मेरी समझ में नहीं आई। दोस्ताना से अंदाज में उसने मुस्कुराते हुए पूछा। वो वहाँ से फौरन पलट जाना चाहती थी, वो ऐसा नहीं कर सकी। इर्तजा ने समन की बात बड़े गौर से सुनी, कुछ देर यूं ही खामोश रहा जैसे वो इस बारे में सोच रहा हो। फिर उसने उसकी आंखों पर झांकते हुए बड़े गहरे और गंभीर लहजे में पूछा, वो मैं तुमसे मांगूंगा, वो तुम मुझे दोगी समन? समन का इस बात पर क्या रद्द अमल था वो देख नहीं पाई, क्योंकि वो वहाँ रुकी ही नहीं थी। तेजी से चलते हुए वो वापस अपने कमरे में आ गई और गिरने वाले अंदाज में वो सोफे पर बैठ गई। गिफ्ट उसके हाथ से फिसलकर कारपेट पर गिर गया। वो वहाँ रुककर क्या करती? इकरार का वो लम्हा उसके लिए नहीं समन के लिए था। वो लम्हा, वो इकरार, वो शख्स समन के लिए था। उसे रोना नहीं आ रहा था। वो साकित बैठी अपने दिल की किरची किरची होकर टूटने और बिखरने की आवाजें सुन रही थी। अजब है दर मोहब्बत का, जो मुश्किल पर नहीं खुलता। नहीं चलता यहाँ सिम सिम, किसी को दोष क्या हम दे। कहाँ गायब हो बेमुरव्वत लड़की, और कहाँ छुपा रखा है तुमने मेरा गिफ्ट? शाम को इतजा ने उसकी शक्ल देखते ही शिकवा किया। वो उसकी तरफ देखकर बड़ी बहादुरी से मुस्कुराई और फिर बोली, मैं अभी आई। कहकर वहाँ से भागती हुई अपने कमरे में गई और जल्दी से तोहफा उठाकर लाई। इतजा के हाथ में उसने तोहफा पकड़ाया, जिसे उसने शुक्रिया कहते हुए कबूल कर लिया। लाउंज में उस वक्त घर के सब अफराद बैठे हुए थे। इतजा ने फौरन ही तोहफा खोल लिया था। हुड टाई और वॉलेट का खूब अच्छी तरह मुआयना करने और बहुत सारी तारीफें करने के बाद अब वो बाकी सब लोगों को भी सबा का दिया हुआ तोहफा दिखाने लगा। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। कितने प्यार से सबा ने सालगिरह के दिन से कितने दिन पहले ही तोहफा खरीद कर रखा हुआ था। ये नहीं कि वक्त के वक्त ऊपरी दिल से रस्म निभाने को पूछने खड़ी हो जाती कि इर्तजा भाई आप तोहफे में क्या लेंगे। इर्तजा की बात सबसे ज्यादा अच्छी तरह यहाँ समन और सबा ही समझ सकती थी। समन ने इर्तजा की नजरें और जुमले मायने खेजी महसूस करते हुए बेसाख्ता उसे नजरें चुराई थी। वो उसके इस अंदाज पर जेरे लब मुस्कुरा रहा था। सफर इर्तजा के ताने देने पर यह समझा कि वो शायद उसे और समन को मुश्तरका तौर पर शर्मिंदा करना चाह रहा है, इसीलिए फौरन लड़ने वाले अंदाज में बोला, भाई साहब वो दिन गुजर गए जब हम इतने बेवकूफ हुआ करते थे। अब एक हाथ दो और एक हाथ लो का जमाना है। अगर गिफ्ट वसूल करने का इतना शौक है तो तुम पहले शानदार सा डिनर करवाओ, वो भी हम लोगों की पसंद की जगह पर, फिर गिफ्ट वगैरह की कोई उम्मीद रखेगा। ये बगैर ट्रीट के गिफ्ट तो आपको सिर्फ आपका चमचा ग्रुप ही दे सकता है। जुमले के इख्तिताम पर जफर ने एक शोक सी नजर सबा पर डाली थी। उसे पता था चमचा ग्रुप के लाए जाने पर वो लड़ने मरने पर आमादा हो जाएगी। बाबा ने इस मौका पर इसकी मुश्किल आसान कर दी थी और झट इसकी हमायत में बोलना शुरू हो गए। उसने तश्कर अमेज निगाहों से बाबा की तरफ देखा। इर्तजा इन लोगों को रात का खाना बाहर खिलाने ले जा रहा था। समन और सफर साथ जाकर इर्तजा के लिए उन दोनों की तरफ से एक मुश्तरका तोहफा ले आए थे। सबा मैं कौन से कपड़े पहनूं? वह बेदिरी से एक सादा सा सूट इस्तरी कर रही थी जब समन ने उससे पूछा, ये रेड वाला या सी ग्रीन या फिर ये ब्लैक वाला? वो तीन चार हैंगर्स अपने साथ लगाए खड़ी थी। तुम कुछ भी पहन लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, उसने उन तमाम ड्रेसेस पर एक नगाह डालते हुए संजीदगी से कहा। लेकिन वो इस जवाब पर मुतमईन नहीं हुई थी। बताओ ना कौन सा पहनूं? اس نے دوبارہ اصرار کیا. اس کے اصرار پر آخر کار اس نے اپنی رائے دے ہی دی. وہ آج بہت اہتمام سے تیار ہو رہی تھی. صبا اس کی تیاریوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی. تیاری کے معاملے میں اس نے سمن کو اتنا حساس اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا.
آج کچھ خاص دن ہے سمن، میں تو تمہیں بہن کی نظروں سے دیکھ رہی ہوں، اور ظاہر بات ہے مجھے تم ہر طرح سے پیاری لگتی ہو. چاہے تم لون کا پرانا سا سوٹ پہن لو اور بالوں میں تیل چوپڑ کر ماسیوں والا حلیہ بنا کر بھی میرے ساتھ آؤ تو مجھے تب بھی تم اچھی لگو. اور جن نظروں سے آج تم خود کو جانچ رہی ہو، تم بے فکر رہو، وہاں تمہارے لیے ستائش ہی ستائش ہوگی. وہ نظریں تمہارے چہرے کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی.
پھر جب وہ چاروں ہوٹل میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے اپنی پسندیدہ ڈشز سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تو سمن کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پتا چلا کہ جب کسی لڑکی کو چاہا جاتا ہے تو چاہے جانے کا انوکھا سا احساس اسے مزید خوبصورت بنا دیتا ہے. سمن تقریباً سارا وقت زیادہ تر خاموش رہی تھی. سر جھکائے کھانا کھاتی، ارتضا سے نظریں چراتی، اور اس کے گالوں کا بکھرا ہوا وہ گلال صبا اسے دیکھ کر بس حیران ہو رہی تھی. اس کا چہرہ کتنا دلکش، کتنا من موہنا سا لگ رہا تھا. اس پر سے نظریں ہٹانے کو صبا کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا. ارتضا بہانے بہانے سے اسے مخاطب کر رہا تھا، اور وہ اس کی عام سی باتوں پر بھی پوری طرح کنفیوز ہو رہی تھی. مزید ویڈیوز اور سٹوریز کے لیے ہمارے چینل یونیک سٹوریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز وقت پہ ملی جا سکیں. شکریہ.